हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 11वें अध्याय श्लोक क्रमांक 38। त्वामादिदे, ये सब श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं भगवान का विश्वरूप दर्शन करने के बाद उनकी स्तुति में। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः।
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः।
त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्।
त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम।
त्वया ततं विश्वमनंत रूप।
त्वया ततं विश्वमनंत रूपा।
त्वम आदि देव, आप ही आदि परमेश्वर हैं। पुरुषः, पुरुष हैं। पुराण, पुरुषः पुराण मतलब आप पुराण पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, अस्य विश्वस्य, इस विश्व के आप परम निधान हैं। निधान का तब को मैंने समझाया था, निधीयते अस्मिन, जहां पे कोई वस्तु रहती है तो ये जगत आप में ही रहता है, इसलिए आप इसके परम आश्रय परम निधान हैं। वेतासि वेद्यम, वेद्यम मतलब आप ही जाने जाने योग्य हैं, और जानने वाले भी आप हैं और जानने योग्य भी आप ही हैं। इस जगत को आप ही जानते हो, और इस जगत में अगर कुछ जानने योग्य है तो आप हैं। अगर कोई भगवान को जान लेता है तो सब कुछ जान लेता है। च परम च धाम, और आप ही परम धाम हैं। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, आप ही अनंत रूप में विद्यमान हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। वस्तुतः इस जगत में हम कुछ भी देख रहे हैं तो भगवान की शक्ति है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। परम धाम को यहाँ पे व्याख्या की जा रही है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। शोक, हम वापस देखते हैं क्या लिखा था इसमें। त्वया, आपके द्वारा, ततम विश्वम अनंत रूप, आपके अनंत रूप हैं और आपके द्वारा ये विश्व हर जगह व्याप्त है। जैसे सूर्य की रोशनी पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करती है, हर जगह व्याप्त रहती है, उसी प्रकार से भगवान की शक्तियां पूरे विश्व में व्याप्त हैं। ये बात वो बोल रहे हैं। गीता भूषण टीका, किसी को फोन चाहिए तो ये फोन आप ले सकते हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है जहां कोई वस्तु रखी जाए। आप अकेले ही जगत को जानने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ने, इसका अर्थ क्या है, आप ही जगत के आश्रय हैं। आश्रय का अर्थ क्या है, इस जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता है तो उसके आधार भगवान है। ये बात बोली जा रही है, ठीक है। तो सृष्टि भी भगवान के द्वारा होती है, मध्य में भी वह भगवान पे आश्रित है, और श्लोक क्रमांक 36 पढ़ रहे, 35 पढ़ रहे, 36 है ना, 38 पढ़ रहे, 38 पढ़ रहे। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, तो इस जगत में हर वस्तु की सत्ता भगवान पे ही आश्रित है और भगवान की सत्ता किसी पे भी आश्रित नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं परम आश्रय आप हैं। आप अकेले ही इस जगत को जानने वाले हैं और आप अकेले ही इस जगत में सबसे, सबके द्वारा जानने योग्य वस्तु हैं। ये बहुत सुंदर बात है। हम लोगों को लगता है ना कि हम रजगुण तमगुण को जानते हैं, हम उन गुणों को नहीं जानते हैं। उन गुणों को कोई भी नहीं जानता भगवान को छोड़ करके, क्योंकि सभी लोग उन गुणों के द्वारा स्पृष्ट हैं। उन गुणों के प्रभाव को देख रहे हैं हम लोग और उनके द्वारा बंधे भी हैं, लेकिन वो गुण क्या है समझ में नहीं आता। प्रकृति क्या है वो समझ में नहीं आता। इसको भागवत में भी बोला गया है कि माया का स्वरूप क्या है, तो माया के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। माया वस्तुतः अनिर्वचनीय है, वो क्या है वो समझ नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को बता रहे हैं, किस प्रकार सृष्टि में सृजन करती है, जगत को, जीवों को बांधती है, ये सारा कार्य करती है। लेकिन माया भी भगवान की शक्ति है और भगवान ही जानते हैं कि माया कौन है, कोई नहीं जानता माया कौन, समझ रहे भगवान, यानी कहने की जगत को भी जानने वाले भगवान ही है। आप देख लीजिए ना कि साइंटिस्ट कितना प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, उसके बाद इसके अंदर एक एटम, उसके अंदर और प्रवेश, और अधिक अधिक रहस्यमय वस्तु, पूरा संसार एक छोटे से एटम में उनको दिखने लगता है कि नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि अब हम समझ सकते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जटिल वस्तु है, इतनी जटिल व्यवस्था करने के पीछे कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा, समझ नहीं पाते हो, आश्चर्य क्यों समझ नहीं पाते। तो यानी अकेले भगवान ही इस जगत में हर वस्तु को जानते हैं, और सबके द्वारा आप ही जानने योग्य हैं, इसको हम भगवद गीता में आगे भी सुनेंगे। वेद्यम क्या है, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यम, वेद ही सारे ज्ञान का स्रोत है, और वेद का उद्देश्य है कि लोग भगवान को समझें, भगवान से अपने संबंध को समझें, और उसको नहीं समझा है तो कुछ नहीं समझा है, जीवन हमने अज्ञान में बिता दिया। ये बात बोल रहे हैं कि आपको ही जानना जीवन का परम लक्ष्य है। यह कैसे, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में आप ही व्याप्त हैं, क्योंकि आप ही परम व्योम के रूप में प्रख्यात आध्यात्मिक जगत हैं जिसको प्राप्त किया जाना चाहिए। समझ में आ रही बात है, बड़ी अटपटा सा बात है, मतलब बड़ी अद्भुत बात है। इस जगत में हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं या जान रहे हैं, वह वस्तु भगवान ही है, अर्थात भगवान की शक्ति ही है। इस जगत में हम कुछ भी जान रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, कोई हमने बताया था ना, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान मतलब ज्ञान, और ज्ञेय मतलब जिसके जिसको जाना जा रहा है, वह वस्तु भगवान ही है, अर्थात भगवान की शक्ति ही है, भगवान से अलग कुछ भी नहीं। तो ये बात बोल रहे हैं कि जगत में आपके अलावा और कुछ जानने योग्य वस्तु है नहीं, आपके अलावा कोई इस जगत में कोई भिन्न वस्तु है नहीं, कोई और तत्व है ही नहीं, सब कुछ आपकी ही शक्ति है, इसलिए वो बोल रहे हैं। साथ साथ इससे परे आपका एक सच्चिदानंद स्वरूप भी है, जो जानते हैं भगवान का जो स्वरूप है वह जो आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित रहता है उसको जानना चाहिए। आप ही वह आध्यात्मिक जगत हैं, क्योंकि वह आपकी पराशक्ति का वैभव है। इसको परम शब्द से इंगित किया गया है, परम धाम बोला गया था ना अभी भगवान को, तो परम धाम का अर्थ है इस प्रखाम ने परम धाम को जहां आप बोल रहे हैं वो अलग श्लोक में है, आप बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ बैठिए, बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान का धाम जो है आध्यात्मिक धाम, वह भी भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वह भी भगवान की चित्त शक्ति का विलास है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, परम धाम क्यों कह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत भी भगवान से अभिन्न है, उसको भगवान कह रहे हैं कि आप परम धाम है। यस, तात्पर्य प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय है, इसकी व्याख्या हमने कर दिया था। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं, मतलब उन्हीं में ही उन्हीं में आश्रय प्राप्त करती हैं, उन्हीं में स्थित हैं। वे संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूं जो भूत में हुआ, भूतकाल में हुआ, वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है मैं जानता हूं, और भविष्य में जो कुछ भी होगा वह भी मैं जानता हूं, लेकिन मुझको कोई नहीं जानता, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। ये समझ में आ रहा है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभा। तो कोई ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है तो उसका पर्यवसान, उसका कल्मिनेशन, लास्ट पॉइंट वो ये है कि भगवान को समझे, अपने संबंध को भगवान से समझ जाए। ठीक है, यस्मिन विज्ञाते एव सर्वम एवं विज्ञातम भवति। अगर कोई भगवान को जान लेता है तो सब कुछ जान लेता है। इस पर श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा, क्या आध्यात्मिक गुरु को सब कुछ पता होता है? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, यही बोला, यस्मिन विज्ञाते एवं सर्वम एवं विज्ञातम भवति, जो भगवान को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। तो उनके शिष्य ने पूछा कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कितने शीशे हैं? अमेरिका की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें कितनी खिड़कियां हैं और उसमें कितने शीशे हैं, कि यह भी गुरु जी को पता है? श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, यह जानने से क्या लाभ होगा कि मृत तृष्णा में कितना पानी है? क्या उत्तर समझ में आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नोइंग हाउ मच वाटर इज देयर इन द मिराज? हाँ, पानी मृत तृष्णा में पानी नहीं होता है, तो गुरु जी से यह पूछना कि भाई आप ये बताइए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, या पूछा जाए कि भाई थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताइए। तो एक आध्यात्मिक गुरु को आवश्यकता नहीं, जरूरी नहीं कि उनको पता हो। अभी आप पढ़ने वाले हो भागवत में कि सूत गोस्वामी जी को बोलते हैं कि वेद के भी वह भाग जो कर्मकांड से संबंधित है उसके बारे में आप जानते नहीं है, उस भाग के बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो पुराण है और ये जो भगवान की भक्ति के संबंध में है इसको आप अच्छे से जानते हो। तो नहीं जानते इसका मतलब वो नहीं है कि वो न्यून हो गए, मुख्य बात तो भगवान की भक्ति जानना है, समझ रहे ना मेरी बात। तो अगर गुरु जी को ये सब बातें नहीं पता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं, उनको ये पता है कि इस जगह से बाहर कैसे निकलना है, भगवान की भक्ति करनी कैसे करनी, ठीक है। अतः वे ज्ञाता हैं, और ज्ञाता है मतलब कौन ज्ञाता है, भगवान, और ज्ञेय यानी वेद्य है, वेद्य भी मतलब उनको जानना जाना चाहिए, वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। ये समझ में आई बात, वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, मतलब इस जगत में हर वस्तु जो आप देख रहे हो वो भगवान ही है, भगवान की शक्ति ही है, और इसको नहीं समझना यही माया का कारण है। ये कह सकते हैं माया के कारण हम ही समझ नहीं पा रहे, डज इट मेक सेंस। जैसे अगर आपके आध्यात्मिक गुरु गुरु महाराज का चप्पल कहीं रखी हो तो क्या आप उस चप्पल को लेकर खुद ही पहनना चालू कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको स्मरण है कि नहीं ये तो परम आदरणीय है, ये तो मेरे गुरु महाराज की चप्पल है। बस इस पे भी घटना हुई थी, प्रभुपाद जी मेरे अफ्रीका गए और अफ्रीका में कुछ लड़के अफ्रीकन नए थे तो सो रात में कपड़े सुखाए प्रभुपाद जी के धोती कुर्ता, और सुबह देखा मिल नहीं रहा है, जो भी हो तो सुबह देखा मंगल आरती में वो लड़के धोती कुर्ता प्रभुपाद जी को पहन के बैठे हुए थे। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कहने की बात ये है कि सर्वव्यापी हैं तो भगवान की शक्ति को देख करके उसमें कभी भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होगा, ये बात जानना चाहिए व्यक्ति। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वह दिव्य हैं। देखिए प्रभुपाद जी की बात टीका से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, परम धाम क्या करें, आप ही परम धाम है, वृंदावन धाम क्या है, आराध्य भगवान ब्रज चैतन्यस तद धाम वृंदावनम, भगवान का वृंदावन धाम भगवान से भिन्न है, जिस प्रकार से भगवान पूजनीय है उसी प्रकार से वृंदावन धाम भी पूजनीय है। तो ये बात आप बोल रहे हैं कि आपका धाम भी आपसे अभिन्न है, आपकी चित्त शक्ति का विलास है। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं, दिव्य लोक में प्रधान पुरुष है उसका अर्थ है आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जगत गोलोक में भी वह प्रधान है, उन्हीं की पूजा वही सर्वश्रेष्ठ पूजनीय व्यक्ति है। स्पष्ट आगे पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए।
वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांकः,
वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांकः,
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च,
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च,
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः,
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः,
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते,
भूयोऽपि नमो नमस्ते।
क्या है वायु, यम, यम सब शब्दों का अर्थ जानते हो, यम मतलब यमराज जी, वायु, यम, अग्नि, वरुण देवता, शशांक मतलब हो गया चंद्रमा, और शश अंक नहीं वह तो चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा को शशांक क्यों कहते हैं, शश मतलब खरगोश का अंक जो चिन्ह अंकित है इस कारण शशांक कहते हैं, शशांक मतलब चंद्रमा, प्रजापति यानी ब्रह्मा जी, और प्रपितामहश्च, पितामह कौन है, ब्रह्मा जी, और उनके पिताजी हैं भगवान कृष्ण को पर पितामह कहा जा रहा है। तो आप ये सभी कुछ हैं, इसलिए नमो नमस्ते तो सहस्त्र कृत्वा, मैं आपको हजारों हजारों बार सहस्त्र कृत्वा हजारों हजारों बार प्रणाम कर रहा हूँ, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, और फिर पुनः प्रणाम कर रहा हूँ। मतलब भगवान की महानता को समझ करके स्वाभाविक है कि भगवान में शरणागति है और भगवान को वे बार बार प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, आप वायु हैं तथा परम नियंता हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं, अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। स्पष्ट है गीता भूषण टीका, सभी शब्द शब्दों में होना चाहिए, सभी शब्दों में आपका ही वर्णन करते हैं, आप ही सभी देवता हैं, इसको वायु से लेकर चंद्रमा के उपलक्षण से समझ लेना चाहिए। मतलब वायु और चंद्रमा को नाम दिया गया है, इसे समझना चाहिए कि अन्य देवता भी भगवान ही हैं। इसका अर्थ क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी आगे आएगा। ब्रह्मा जी पितामह हैं और आप उनके पिता हैं, इसलिए आप प्रपितामह हैं, ये स्पष्ट है। ये सभी रूप आप ही हैं, क्योंकि वायु आदि में उनके कारण रूप में आप व्याप्त हैं, क्योंकि आप चित व अचित शक्ति को धारण करने वाले हैं। आप सोने के समान आभूषणों में व्याप्त हैं, क्योंकि आप सभी के द्वारा सम्मानी हैं। हाँ, सिर के इतना समझिए। जैसे मैं कहूं कि ये क्या है, तो कहेंगे हारमोनियम है। मैं कहूंगा ये क्या है, तो कहेंगे भी टेबल है। तो आप, वो एक छोटी टेबल है, एक बड़ी टेबल है, ये हारमोनियम है, तो वो मृदंग है, ये एक लैपटॉप है। क्या विविधताएं दिख रही कि नहीं दिख रही? अब मैं ये कहूं कि ये सारी चीजें पृथ्वी हैं, तो मानेंगे आप? समझ गए? इस सभी वस्तुओं में कारण रूप में पृथ्वी तत्व विद्यमान है। ये समझ में आ रहा है? भले ही हम JBL स्पीकर, सॉरी यामाहा का स्पीकर कहें, एक मिक्सर है, एक एम्पलीफायर है, अन्य वस्तुएं हैं, ये मेरा शरीर है, इसमें विविधता है, लेकिन इसमें एक कॉमन सूत्र क्या है? पृथ्वी तत्व। ये समझ में आ रहा है? उसका उदाहरण हमने कल भी दिया था कि यहाँ पे उदाहरण जो दिया जा रहा है कि आप सोने के विभिन्न आभूषणों को देखते हैं, जैसे कि कान में पहने जाने वाले कुंडल, गले में पहने जाने वाली माला, करधनी हाथ में बांधी जाती है, कमर में बांधते हैं, अनुभव नहीं है, करधनी हाथ में बांधते हैं, हाँ धनी जो भी रहता हो, जो भी है ठीक है, करधनी जो पेट पे, मतलब पेट में नहीं सॉरी कमर में बांधते हैं, और हाथ में भी कुछ कड़े पहनते हैं, तो इनके विभिन्न रूप आप देख रहे हो, लेकिन वस्तुतः यह स्वर्ण ही है। स्वर्ण इन सभी आभूषणों में व्याप्त है, ठीक है। तो हम विभिन्न विभिन्न देवताओं को देख रहे हैं, लेकिन उन सभी देवताओं में भगवान व्याप्त हैं, उनके शरीरों में, उनके हृदय में। तो वह देवता क्योंकि भगवान उनके कारण हैं और देवता उनके कार्य हैं, इसलिए कार्य और कारण में अभेद की दृष्टि से कहा जा रहा है कि सभी देवता भगवान ही हैं, भगवान की विभूति हैं। समझ में आ रही बात? भगवान से अलग नहीं है। भगवान से देवताओं को अलग मानना ये एक अपराध है, स्वतंत्र ईश्वर मानना ये एक अपराध है, और दूसरा भगवान को सॉरी और देवताओं को भगवान से अलग मानना यह भी एक अपराध है। समझ पा रहे हैं? देवताओं को भगवान से अलग स्वतंत्र ईश्वर मानना यह अपराध तो है ही, और देवताओं को भगवान से अलग मानना यह भी एक अपराध है। वे भगवान के प्रिय सेवक हैं, उनका अपमान करना यह गलत है, उनको भगवान बनाना यह भी गलत है, लेकिन उनको भगवान से अलग देखना यह भी गलत है। कोई वैष्णव है और अगर वह देवताओं का असम्मान करता है तो भगवान को प्रसन्न नहीं करता। अनन्यता है, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि देवताओं का असम्मान करना। Does it make sense? सभी में भगवान, माइक पे बताइए। ऑन नहीं किया।
देवता लोगों से भगवान स्वतंत्र है, ये तो समझ में आता है, ये नाम अपराध में भी आता है कि उनको समान नहीं करना। मगर जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है जिसमें कहते हैं कि भगवान से उनको अलग देखना,
हाँ अलग तो... देखने का अर्थ है कि भगवान, जैसे कि सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई यहाँ पे डीएम है, तो डीएम की एक इंडिविजुअलिटी है, वो एक व्यक्ति है, लेकिन उसका अपमान करते हैं तो वह प्राइम मिनिस्टर का ही अपमान है, क्योंकि उसको जो शक्ति प्रदान की जा रही है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जा रही है, वह प्राइम मिनिस्टर की आज्ञा से कार्य कर रहा है। जैसे कोई शिव जी का अपमान करे या ब्रह्मा जी का अपमान करे या इंद्र का अपमान करे और कहे कि मैं भक्त हूं, तो यह बिल्कुल उचित बात नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? भक्त तो भगवान सभी का सम्मान करते हैं और देवता तो भगवान के दास हैं, उनके सेवक हैं। तो देव का, जैसे भगवान शिव जी कहते हैं कि जितने भी भगवान विष्णु के भक्त हैं वे मुझको बहुत प्रिय हैं और मैं भी उनको बहुत प्रिय हूं, तो स्वाभाविक सी बात है कि भक्तों का देवताओं के प्रति कोई क्या शब्द यूज करना चाहिए, विरोध भावना नहीं होनी चाहिए। अनन्य है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि देवताओं का असम्मान करें। देखिए आप महाप्रभु जाते थे तो शिव जी के मंदिर में भी जाते थे, दुर्गा जी के मंदिर में जाते थे, हर जगह के वो हरे कृष्णा कीर्तन ही करते थे, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन कोई कहे कि मैं हनुमान जी का अपराध करूंगा या उनका असम्मान करूंगा या मंदिर आया सामने तो उसे मुंह घुमा लिया इधर ना ना, तो यह सब जो है अपराध बन जाता है, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जब भी आप किसी देवता को देखें तो वांछा कल्पतरु करना चाहिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी मति भगवान में लगे। ठीक है, ये बात। जैसे कि आप देखो ध्रुव महाराज ने, क्या नाम था उनका, कुबेर जी ने बोला कि क्या वरदान चाहते हो, तो उन्हें बोला आप ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी भक्ति भगवान विष्णु में बढ़े। ये बात कहाँ थे हम लोग। यह सभी रूप आप ही हैं क्योंकि वायु आदि में उनके कारण रूप में आप व्याप्त हैं, क्योंकि आप चिद व अचित शक्ति को धारण करने वाले हैं। मतलब जितना भी भौतिक वस्तुएं दिख रही हैं ये भगवान की अचिद, अचिद मतलब भौतिक शक्ति का प्राकट्य है, और चिद मतलब आध्यात्मिक शक्ति यानी कि आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं, दोनों शक्ति को धारण कर रहे हैं। यस प्रभु,
याद आ गया मेरे को। मैं ये पूछने के लिए चाह रहा था कि जैसे माधवेंद्रपुरी शायद बोलते ना कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं श्राद्ध भी नहीं दे सकता हूँ, हे देवता तुम मेरे को माफ कर देना।
हाँ, हाँ, हाँ। देखिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं कि मैं और सारे जो वैदिक नियम है उनका पालन नहीं कर सकता, उनको मैं दूर से सम्मान करता हूँ। तुभ्यम भो तुभ्यम नमः, असम्मान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं आपको नमस्कार है लेकिन मैं जहां पे भी रहता हूँ वहां पे मैं कंस के दुश्मन कृष्ण की कंसारी कृष्ण का स्मरण कर सकता हूँ, और ये मैं मानता हूँ मेरे लिए पर्याप्त है, अलम है। अलम मतलब पर्याप्त है। तो आप समझिए मेरी बात, भगवान का भक्त भगवान की ही पूजा करता है लेकिन देवताओं का असम्मान नहीं करता। ये बात बोली जा रही है, ये बात खाली बोली जा रही है कि देवताओं को भगवान से अलग नहीं देखना। जैसे हम डीएम का सम्मान क्यों करते हैं, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट का वह प्रतिनिधित्व करते हैं। अरे डीएम छोड़ दीजिए, डीएम का वो जो चेला होता है क्या कहते हैं उसको, क्या लोएस्ट अधिकारी क्या बोलेंगे उसका, पियोन सेक्रेटरी जो एकदम, उसका भी सम्मान किया जाता है ना, क्योंकि उसका संबंध हम सरकार से देख रहे हैं। ये बात, इतनी सारी व्यवस्था चला रहे हैं देवता तो उसका हम सम्मान करते हैं। जैसे कि हम लोग नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम, सरस्वती देवी की भी हम प्रणाम करते हैं क्योंकि कृपा से ये कुछ बोल पा रहे हैं। बहुत अच्छा बात महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग सोच रहे कि हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, माता सरस्वती बोलती है। जब हम कुछ बोलने की इच्छा करते हैं भगवान के बारे में तो उनकी कृपा से हम कुछ बोल पाते हैं, उनकी कृपा से हम कुछ समझ पाते हैं। वैसे वो दिव्य सरस्वती के बारे में बोल रहे हैं लेकिन जो भी है उनके आशीर्वाद से हो पा रहा। और देवता भी जब देखते हैं कि भक्त लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे मेरे हाथ कौन संचालित कर रहा है, इंद्र देवता। बुद्धि कौन संचालित कर रहा है, ब्रह्मा जी कर रहे हैं ना। आंखें कौन कर रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो सारे देवता बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में कहते हैं जब भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान के जो देवता हैं वे भगवान के भक्त हैं, तो वह अपने आदि दैविक शक्तियों के द्वारा भक्त की मदद करते हैं, तो इस प्रकार से उनको भी बड़ा प्रसन्नता होती है। ठीक है, आप सोने के समान आभूषणों में व्याप्त हैं, ये समझ में आ गया। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान ना हो, क्योंकि आप सभी के द्वारा सम्माननीय हैं इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। मैं आपको हजारों बार प्रणाम करता हूं और पुनः फिर प्रणाम करता हूं। स्पष्ट है तात्पर्य भगवान को। बस एक बात कहना चाहता हूं, जब भगवान की महिमा भक्त को समझ में आती है तो भगवान की शरण वह लेता ही है, बारम्बार भगवान को प्रणाम वह करता ही है। ये बात समझना चाहिए। तात्पर्य भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह पर बाबा कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। शुद्ध प्रभा जितना ही टीका किए, आगे बढ़ते हैं। फिर पीछे बोलिए, नमः पुरस्तादत प्रेष्ठतस्ते,
नमः पुरस्तात् पदष्टतस्ते,
नमस्तुते सर्वत एव सर्व,
नमोस्तुते सर्वत एव सर्व,
अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम्,
अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम्,
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः,
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः।
पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमः, आपको सामने से प्रणाम है। पृष्ठ मतलब पीछे से प्रणाम है, पृष्ठ मतलब पीछे से लिखा है, पीछे लिखा है, पीछे से। नमस्तुते सर्वत एव सर्व, एव सर्व मतलब आप ही सब कुछ हैं। सभी सर्वतः का अर्थ हम प्रपद लिए हैं सभी दिशाओं से, यानी सामने से पीछे से सभी दिशाओं से आपको प्रणाम है। और एव सर्व आप ही सब कुछ हैं सभी तरफ से। अनंत वीर्याम अनंत वीर्या मित विक्रमस्तम, आपका अनंत वीर है, अनंत शक्ति है, अमित विक्रम है, अमित मतलब अनंत विक्रम है, पराक्रम है आपका। सर्वम समाप्नोषि, आप ही सब कुछ हैं, ततोषि सर्व, इसलिए आप सभी कुछ हैं। सर्वम समाप्नोषि का अर्थ है क्योंकि आप सब में व्याप्त हैं इसीलिए आप सब कुछ हैं। वही उदाहरण, टेबल हारमोनियम ये बड़ी टेबल सभी कुछ पृथ्वी ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि भगवान सब जगह व्याप्त हैं इसलिए। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ थे हम लोग, क्योंकि आप सब कुछ हैं इस कारण से आप सभी जगह व्याप्त हैं इसीलिए आप सब कुछ हैं। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। आप सर्वव्यापी हैं इसलिए आप सब कुछ हैं, ये समझ में आ रही बात? ठीक ओके। पार्थ प्रभु समझाइए, माइक दीजिए प्रभु जी। भगवान सब कुछ है क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं इसलिए भगवान सब कुछ है, ऐसा क्यों माना जा रहा?
क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले हैं।
नहीं, इसीलिए ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे थे। भगवान सर्वव्यापी हैं इस कारण से भगवान सब कुछ है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यस परशुराम प्रभु,
भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में।
सब जनरल बातें बोली जा रही हैं लेकिन एग्जैक्ट उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा। इनको दीजिए, मोहित को दीजिए।
क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं।
हाँ, अरे ये तो है, भगवान सर्वव्यापी हैं तो सब 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 कुछ कैसे हैं? यस मोहित, हाँ बोलिए
प्रभु जी। जस्ट अभी आप एग्जांपल दे रहे थे कि ये जितने भी यहाँ पे सामान है सब कुछ पृथ्वी से आई है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ भगवान से आ रहा है, इसलिए भगवान को
सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला जा रहा है।
मतलब नहीं, मतलब सब कुछ भगवान से ही आया है,
सब कुछ भगवान की शक्ति है,
भगवान की शक्ति है,
कारण रूप में भगवान सब जगह व्याप्त है इसी कारण से वह सभी कुछ है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका, अतिशय भक्ति के कारण यह नहीं जानते हो कि कितने प्रणाम पर्याप्त होंगे। अर्जुन बार बार प्रणाम कर रहे हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग टीका है। आप ही सब कुछ हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो सभी जगह अवस्थित हैं, अर्थात पीछे सामने और सभी जगह, हर दिशा में तो भगवान ही दिख रहे हैं तो हर जगह वो प्रणाम कर रहे हैं। आपके पास असीमित शारीरिक बल और अपरिमित मानसिक बल है। तो देखिए यहीं पे व्याख्या हो रही है, अनंत वीर्याम, क्या शब्द था? अनंत वीर्याम, अनंत वीर्याम मित विक्रमस्तम। अनंत वीर्य मतलब उनके अंदर अनंत शारीरिक बल है, और अमित विक्रम मतलब उनमें अत्यधिक मानसिक बल है, ये बात बोल रहे। इसलिए आप शास्त्र का प्रयोग करने में प्रवीण हैं। यह क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर किसी के पास शास्त्रिक क्या हुआ, अगर किसी के पास शारीरिक शक्ति है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके पास वह मानसिक बल या बुद्धि हो जिसके द्वारा वह शास्त्र के शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन कर सके। कोई अगर स्वस्थ है इसका मतलब ये नहीं कि वो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है या धर्म का पालन कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो कुछ लोगों के पास शरीर का बल अधिक होता है, कुछ लोगों के पास ज्ञान अधिक होता है, लेकिन भगवान के पास शरीर का बल भी अनंत है और शास्त्र ज्ञान, और उसको शास्त्र ज्ञान को कैसे किसी विशेष परिस्थिति में, इंग्लिश में कहेंगे अप्लाई, हिंदी में क्या कहें इसको, प्रयोग किया जाए, इसको भी भगवान अच्छी तरह से जानते हैं। यह दर्शाता है कि अन्यों के पास एक प्रकार की शक्ति ही है। भीम आदि के पास अति शारीरिक बल है और दुर्योधन आदि के पास शिक्षा के लिए अत्यधिक बुद्धि है। आपको पता होगा कि दुर्योधन जी कला में बड़े एक्सपर्ट थे, डिप्लोमा बुद्धि में भी तेज थे, और वो कुकिंग की बात कहां से, कौन बोला कुकिंग है? अरे भाई दुर्योधन की बात आ रही, दुर्योधन कुकिंग में कहां से? गदा युद्ध में भी कौशल उनका बहुत था, लेकिन भगवान के बारे में बात है दोनों ही शक्तियां थे उनके पास, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का प्रयोग, शारीरिक बल, सब में भगवान सर्वश्रेष्ठ है, कोई कमी नहीं थी, ये कहना चाह रहे हैं। अर्जुन फिर भगवान के सभी रूप होने के कारण कह रहे हैं आप सर्वव्यापी हैं इसलिए आप सब कुछ है, तो इसकी व्याख्या तो मैंने कई बार कर दी, इसकी व्याख्या यहाँ पे नहीं करेंगे। विष्णु पुराण इसकी पुष्टि करता है, योयम तवागतो देव समीपम देवता गणः सत्वम एव जगत सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। हे भगवान, जो देवता आपके पास आता है वह आप ही है, क्योंकि हे जगत सृष्टा आप सर्वव्यापी हैं। अब समझ में आया कि देवता भगवान कैसे है, भगवान की विभूति है, भगवान से अलग नहीं है, यह समझना चाहिए, भगवान ही उसके कारण है। ठीक है, इसको मैंने एक उदाहरण से समझाया था आप लोगों को कि कभी अगर डीएम का अगर लेटर आता है और लेटर जो है वह है एक चपरासी लेके आता है, प्राय चपरासी या कोई डाक या कोई भी लेके आता है, मान लो चपरासी ने आके बोला तो भी हम यही मानते हैं कि आज्ञा जो है डीएम की आज्ञा है, तो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उस देवता को भगवान का प्रतिनिधि मानना चाहना चाहिए, लेकिन भगवान नहीं मानना है, लेकिन भगवान से भिन्न भी नहीं है, यह समझना। तात्पर्य, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है, वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। समझ में आ गया श्रेष्ठ क्यों है, शारीरिक बल भी है और मानसिक बल भी उनके पास असीमित है। विष्णु पुराण में कहा गया है योयम तवागतो देवा समीपम देवता गणः स्वत्वमेव जगत सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। यही बात श्लोक प्रपद कोट कर रहे हैं, आपके समक्ष जो भी आता है चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। तो भगवान कार्य और कारण में अभेद होता है, ये मैंने कई बार समझाया है ना, जैसे बादल और सूर्य में भेद है कि नहीं, लेकिन बादल और सूर्य में अभेद भी है, बादल और सूर्य अलग अलग दिख रहे हैं, सूर्य कहीं दूर है, लेकिन सूर्य क्योंकि बादल का कारण है इसलिए बादल को सूर्य से अभेद कहा गया है। तो देवता और भगवान में बहुत भेद है, देवता तो एक जीव है लेकिन क्योंकि वह भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही अंश है, इसलिए उसको भी अभेद कहा, उस दृष्टि से अभेद कहा जाता है, सिद्धांतिक बात है, उसको समझना चाहिए। यहां रुकेंगे हम लोग, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं तो। प्रश्न है
प्रभु जी, अभी जो शास्त्र का ज्ञान किसी को है मतलब उसको भागवत का भी ज्ञान है क्या, शास्त्र में
ऐसा आप हमेशा नहीं कह सकते, जरूरी नहीं कि जो वेद पढ़ रहा हो भागवत को जानता ही हो।
प्रजापति ब्रह्मा एक आदमी,
ब्रह्मा जी तो जानते ही हैं,
मतलब प्रजापति और ब्रह्मा सेम है क्या, एक है,
अलग अलग कंटेक्स्ट में, कहीं कहीं प्रजापति को ब्रह्मा जी कहा जाता है, कहीं कहीं पे प्रजापति अर्थात भगवान विष्णु भी होता है, सामान्यतः प्रजापति और भी प्रजापति भी हैं, दक्ष प्रजापति इत्यादि जो संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, तो प्रजापति का सामान्यतः ये होता है जो प्रजा उत्पन्न करते हैं, तो ब्रह्मा जी तो प्रजापति हैं ही, और अन्य कहीं किसी किसी स्थान में विष्णु को भी भगवान विष्णु को भी प्रजापति कहा जाता है, प्रजाओं के पति, अलग अलग स्थान पर अलग अलग, दक्ष को भी प्रजापति कहा था, वही प्रजा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।